हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। आज मैं चर्चा करने वाला था भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय से। यह अध्याय का शीर्षक है प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है जो प्रभुपाद जी अक्सर बोलते थे। वो श्लोक हम दोहराएंगे, उसके बाद हम कुछ चर्चा करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्।
ये दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वां श्लोक है।
आयुर्हरति वैपुंसां उद्यन अस्तं च यन्नसौ तस्य ऋते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया।
इस श्लोक का मतलब अनुवाद ऐसा है, आयु का मतलब है हमारे वयस, आयु। हरति का मतलब है जो छीन लेता है। कौन छीन लेता है आयु? उद्यन अस्तम चयनसो, सुबह उदय होने वाला और शाम को अस्तमन होने वाला कौन है? वो सूर्य। हर दिन जब सूर्य उदय होता है अस्तमन होता है, मनुष्य के आयु को एक दिन वो हरा लेता है। वो कैसा है? ये भारत में इस तरह का कैलेंडर बहुत मशहूर है जिसका एक एक पृष्ठ फाड़ते हैं हर दिन, है ना। ऐसे फाड़ फाड़ कर क्या होता है, जब December 31st आता है सब पृष्ठ खत्म हो जाते हैं उधर। ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक एक दिन फाड़ देता है सूर्य, सुबह शाम उदय होते समय अस्तमन होते समय ऐसे निकाल देता है एक एक दिन। तो बताते हैं तस्य ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके आयु को वो निकालता नहीं है ऐसे सूर्य, ऐसे बताते हैं। क्योंकि भक्त लोग जब भगवान की भक्ति में जीवन में लगते हैं तो मृत्यु की निकट जब पहुंचते हैं वो मृत्यु उनको अमृतत्व पर लेके जाता है। स अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व क्या है? असतोम सद्गम है, तमसोम ज्योतिर्गम है, मृत्योर्मा अमृतम गम है। तो भक्त लोग अमृतत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं भगवान की, हम हमेशा ध्यान करते हैं भगवान के नित्य लीला के वो संबंध में। इसके कारण मृत्यु जब आता है भक्त को, वो भक्त बहुत खुशी से मृत्यु को स्वागत करता है दोनों कुले हाथ के साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि मृत्यु के साथ साथ वैकुंठ एयरप्लेन भी आ जाता है भक्त को वैकुंठ लेके जाने के लिए। इसलिए भक्तों के जीवन में भक्तों के आयु को वो हरण नहीं करता है ऐसे बताते हैं। तो प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं इस अध्याय में, क्यों भक्तों को मानव जीवन जो होता है मनुष्य को इसको बहुत बहुमूल्य समय जो प्राप्त हुआ है हमें मानव जीवन में उसको इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा में। प्रभुपाद बताते हैं कि आधुनिक मनुष्य, साधारण मनुष्य भक्तिमय जीवन से आकर्षित होता नहीं, आध्यात्मिकता से आकर्षित होता नहीं, वो अपने भौतिकता में डूबे रहता है, उसका अनेक कारण बताते हैं प्रभुपाद जी। ये कारण बताते हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करना चाहता है, और दूसरा बताते हैं कि वो अपने ऐशोराम सुख सुविधा भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए समय बिताता है। हमने सुना कि जो बम ब्लास्ट हुआ बम्बई में, इसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि अनेक पाश्चात्य देश के लोग भारत में आकर आजकल बिजनेस करते हैं, इसलिए भारत का भी बिजनेस बढ़ गया, पैसा बहुत बढ़ गया भारत में। इसको देखकर कुछ दूसरे देश के लोग ईर्ष्या करते हैं कि भारतवासियों के पास पैसा बढ़ रहा है, इसलिए जाकर कुछ समस्या मचाओ उधर, ताकि ये लोग फॉरेन के लोग आएंगे नहीं भारत में बिजनेस करने के लिए। तो लोगों को इच्छा होता है कि पैसा ज़्यादा मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे मिलने से भी थोड़ा समस्या प्रॉब्लम भी साथ में आते हैं, है ना। कभी कभी लोग खून भी कर देते हैं किसी धनी व्यक्ति को ऐसे है। तो इस तरह भागवत ने बताया गया है पैसा से होने वाले 14 तरह के समस्या के बारे में बताया गया भागवत में सातवें स्कंद में। तो प्रभु जी बताते हैं कि आधुनिक मनुष्य या तो आर्थिक विकास नहीं तो ऐशोराम की विकास इसमें डूबा रहता है, और उसको मालूम नहीं है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मालूम नहीं है उसको। इसलिए वो क्या करता है, अपने इसी जन्म को लंबा करने के लिए, अपने आयु को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता है। कुछ लोग कायाकल्प कराते हैं अपने आयु को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग बाईपास सर्जरी करते हैं ताकि उनका ऐसे हृदय प्राप्त हो जो वो लंबे साल जी सके, ऐसे करते हैं लोग। तो लोगों को इच्छा होता है ज़्यादा साल हम जिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसे लोग सोचते हैं। यह अंधापन के कारण, उनको मालूम नहीं है, अज्ञानता के कारण। तो इसके कारण मनुष्य कठोर परिश्रम करते हुए इस दुनिया में जीते रहता है, उसको जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है ऐसे। तो ऐसे लोग सुबह शाम जब सूर्य का उदय होता है, अस्तमन होता है, वो मर जाते हैं ऐसे लोग, और पुनः किसी और योनि में चले जाते हैं, अलग अलग योनि में घूमते फिरते रहते हैं ऐसे। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको क्या करना चाहिए, उसको समय को ऐसे सदुपयोग करना चाहिए, समय का जैसे हम सोने के सिक्का हो हमारे पास, कैसे हम उसका खर्चा करेंगे, सोच विचार करके हम उसका खर्चा करेंगे ऐसे। आयुष्य क्षण एकोपी नलभ्य स्वर्ण कोटि भी, अगर 1 कोटि स्वर्ण का सिक्के भी आप देने के लिए तैयार हो, एक क्षण को आप वापस नहीं लौटा सकते हैं अपने जीवन में, ऐसे चाणक्य बताते हैं। तो प्रभा जी समझ जाते हैं बहुत सुंदर तरीके से, एक उदाहरण देते हैं इधर। भक्त लोग जो समय बिताते हैं भगवान के लिए उसके संबंध में, वो बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे एक व्यक्ति को पैसा दान में दे दे, जो व्यक्ति अनपढ़ है, अगर आप सोचते हैं कि ब्राह्मण सोचकर आप पैसा दे देते हैं उसको, कोई अपंडित व्यक्ति को, तो अगले जन्म में आपको वो पैसा वापस लौटा जाता है, ऐसे शास्त्र बताते हैं पूरा। अगर आपने 100 रुपया दिया उसको तो 100 रुपया वापिस आपको आ जाता है। तो अगर आप आधा पड़ा हुआ ब्राह्मण को अगर आप एक पैसा देते हो, अगर आप 1 रुपये देते हो, वो उतना अच्छी तरह पढ़ा लिखा नहीं, आधा पढ़ा हो, उसको पूरा जानकारी नहीं है, तो आपको अगले जन्म में प्रपंच बोलते हैं पता था कितना आएगा आपको। ये मनी इज गिवन इन चैरिटी टू अ नॉन ब्राह्मण विदाउट ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, मनी इज रिटर्न्ड इन द नेक्स्ट लाइफ इन सेम प्रपोर्शन। If it is given in charity to a half-educated Brahmana, even then the money is returned double. आपको कितना आएगा? दुगना आ जाएगा वो। If money is given in charity to a learned and fully qualified Brahmana, अगर पूर्ण तरीके से वो पंडित है ब्राह्मण, अगर उसको आप देते हैं तो पैसा it's returned 100 and 1000 times. 1 लाख रुपये आपको वापस मिलेगा। अगर 1 रुपया आप देते हैं तो 1 लाख रुपये वापस आएगा, बताए। लेकिन अगर कोई वेद पारग, जो व्यक्ति वेदों को पढ़कर वेदों का पूर्ण सार उसको मालूम हो गया, वैष्णव है, उसको देने से क्या होता है वो बताते हैं कि आपको अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन, लाखों करोड़ों गुना वापस आपको आएगा। तो प्रभा जी ये उदाहरण देकर बताते हैं कि ये वैदिक संस्कृति में ये ही डिपॉजिट सिस्टम है। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं अलग, कभी कभी लोग सोचते हैं कितना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, कॉस्मास बैंक में कितना मिलेगा, ये बैंक में कितना मिलेगा, गवर्नमेंट बैंक में, लोग सोचते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में लोग क्या करते थे, इस तरह दान देते थे, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि ये दान जो मैं दे रहा हूँ वो आ जाएगा, अगले जन्म में वापस आ जाएगा, ऐसे उनको मालूम था। और हम कैसे हम जान सकते हैं कि लोगों को जो उन्होंने पिछले जन्म में दिया वो वापस आता है, कैसे हमें पता चलता है? आप देख सकते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति बेवकूफ होता है फिर भी बहुत धनी होता है, वो इतना धनी होता है। कोई कोई व्यक्ति देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन वो भी बेवकूफ़ है, कुछ अकल नहीं है उसको। आपने देखा ना ऐसे व्यक्तियों को, देखने में तो एकदम खूबसूरत लेकिन कुछ बुद्धि नहीं है, है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति, उसको बुद्धि नहीं है लेकिन पैसा है बहुत उसके पास, ये क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म में किया हो पुण्य के कारण उसको अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है, या तो सुंदर शरीर, नहीं तो ऊंचे जन्म में, ऊंचे कुल में जन्म प्राप्त होता है, नहीं तो पैसा प्राप्त होता है इसे। और अनेक लोगों को पैसा प्राप्त होता है बहुत कठोर परिश्रम किए बिना भी प्राप्त हो जाता है इसे। तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम जो भी देते हैं किसी को अगले जन्म में आ जाता है वापस बहुत मात्रा में। इस तरह प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति अगर आप ये क्षण देते हो ये अच्छे कार्य के लिए, इधर देखिए क्या प्रभुपाद जी बताते हैं, देयर इज अ गारंटी ऑफ मनी इज बीइंग रिटर्न्ड इफ गिवन इन चैरिटी regardless of the proportion. Similarly, a moment passed in the association of a pure devotee by hearing and chanting the transcendental message of the Lord is a perfect guarantee for eternal life. ऐसे बोलते हैं। क्या बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान में जाता है, उधर एक ब्राह्मण से मिलता है और ब्राह्मण उसको सदुपदेश देता है कि तुम माँ बाप की पूजा करो, मातृदेव व पितृदेव व, तो उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। और अगर कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद अगर एक तीर्थ स्थान में जाता है, एक ज्ञान ही प्राप्त होता है, वो ज्ञान ही उसको ज्ञान देता है तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, इसका ध्यान करो। तो ये करने से उसको आत्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है। लेकिन अगर वो वैष्णव को मिलेगा, वैष्णव बोलेगा अरे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, लेकिन तुम परमात्मा नहीं हो, तुम कौन हो, तुम भगवान के दास हो, जैसे हम इस गीत में गा रहे थे, है ना। तो इस तरह बोलने से उसको जागृत ज्ञान जागृत होता है कि जीव कृष्णदास यही विश्वास कोरले त्वार दुख का नाय। तो इस तरह एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान उसको जागृत हो जाता है, और कुछ समय भी वो क्षण बिताएगा एक वैष्णव के साथ, उसके बदले में उसको क्या प्राप्त होता है, शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, किधर, भगवान के धाम में। ऐसे बताते हैं इस श्लोक में, जिस तरह पैसे देने से आपको बहुत गुना वापस पैसा आता है, इस तरह समय देने से आपको बहुत गुना समय वापस आएगा। और भक्त लोग 24 घंटे देते हैं भगवान को, है ना, सतत हम कीर्तन हैं तोमा, इसलिए भगवान भी अपने सतत समय को उनको दे देते हैं भगवत धाम में। ऐसे लॉजिक बताते हैं प्रभुपाद जी, वंडरफुल लॉजिक इट इज, बिकॉज द डिवोटी गिव्स ऑल हिज टाइम एंड हर टाइम फॉर कृष्णा, एंड कृष्णा ऑल्सो रिटर्न्स all his time for his devotee by taking the devotee to the spiritual world. Bhagavad Gita में ले लेते हैं, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को समय देना अच्छा है, इसलिए भक्त को बहुत खुशी से भगवान को समय देना चाहिए। तो अनेक लोग भगवान के बारे में जानकारी ना होने के कारण भारत में हम देखते हैं वो लोग भौतिक जीवन की ओर मुड़कर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के एक तात्पर्य में बताते हैं कि शुरुआत में इधर एक ऐसा वर्णन आता है परीक्षित के बारे में, परीक्षित जब बच्चे थे वो कृष्ण की मूर्तियों के साथ खेलते थे, तो मैं सब बचपन में था, हमारे घर में सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, राम, कृष्ण, विष्णु, इनका ये होता था, क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, पुतली, हाँ पुतली होता था, हम उसके साथ खेलते थे। लेकिन आजकल जो ऐसे पुतली बनाने वाले सब क्रिकेट बैट बनाना शुरू हो गया, क्रिकेट बैट बनाते हैं वो लोग, ये ऐसे देवताओं की पुतली नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि क्रिकेट बैट जो है वो और आसानी से बिकता है मार्केट में। तो परीक्षित ऐसे खेल रहे थे भगवान कृष्ण के सुंदर विग्रह के साथ बचपन में, ऐसे इतना ही नहीं, जब वो छोटे लड़के थे वो अपने मित्रों के साथ भगवान की लीलाओं को ड्रामा करते थे, वो रचाते थे ऐसे परीक्षित, तो कृष्ण के ऊपर इतना उनका एकाग्रता चित्त के साथ वो प्रेम के साथ भक्ति करते थे ऐसे बचपन में भी। तो प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में लिखते हैं कि उनके जीवन में भी बचपन में उनके माँ बाप ने उनको सिखाया कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे भगवान की दंडवत करना चाहिए, कैसे दर्शन लेना चाहिए, कैसे आरती लेना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा करना चाहिए, सब सिखाया। इतना तक कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी और उनके बहन दोनों पतंग छोड़ते समय प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे बचपन में हैं कि भगवान ये पतंग और ऊपर ऊपर उठे आसमान में है। तो पतंग उड़ाने के लिए भी वो भगवान को प्रार्थना करते थे दोनों बच्चे ऐसे प्रभुपाद जी उनकी बहन है बचपन में। तो उधर प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए हर चीज के लिए भगवान को प्रार्थना करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए सिखाना चाहिए उनको, ऐसे प्रभु जी बताते हैं। और अपने गुरु भक्तान सरस्वती के बारे में भी बताते हैं कैसे वो बचपन से उनको ऐसे अच्छे संस्कार मिले थे। तो प्रभु जी बताते हैं भारत में ऐसे संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति नावल वगैरह पढ़ता नहीं था, अगर नावल पढ़ता तो महाभारत रामायण ऐसे भगवान से संबंधित कथाओं को ही लोग पढ़ते थे, नहीं तो ऐसे कथाओं को सुनने के लिए जाते थे। प्रभुपाद जी के मामा जो हैं उनकी प्रभुपाद जी के माँ के भाई उनके दो मामा थे और दोनों जाते थे रामायण कथा में 8 बजे के बाद, 8 से 10 बजे वो रामायण कथा सुनते थे महाभारत रामायण। और वापस घर लौटते समय जब गाड़ी में वापस लौटते थे गाड़ी में रिविजन करते थे उस प्रवचन में क्या क्या हुआ आज, वो प्रवचन में राम के बारे में लक्ष्मण के बारे में क्या सुना हमने, तो प्रभुपाद जी ये सब देखते थे। तो बोलते हैं कि इस तरह ये भारत का भारत क्यों हम पुण्य भूमि बोलते हैं यही कारण है इस तरह के। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग अलग अलग नावल पढ़ते हैं, आप ट्रेन में जाओ टाइम पास करके वो ऐसे किताब बेचते हैं, ऐसे तरह तरह के गंदे गंदे किताबों को बेचते हैं आजकल, और लोग किसी भी किताब को लेकर पढ़ते हैं उससे शुद्धिकरण होता नहीं उनका हृदय का। और टेलीविजन में भी जो ऐसे सीरियल दिखाते हैं जिसमें परिवार के अंदर भी समस्याएं उठ सकते हैं, ऐसे टेलीविजन में सीरियल दिखाते हैं, अनेक गलत चीज़ों को दिखाते हैं आजकल। तो प्रभु जी बताते हैं कि वो ड्रामा भी जो करते थे जैसे हरिश्चंद्र नहीं तो हनुमान नहीं तो रामचंद्र ऐसे ड्रामाओं को करते थे उन दिनों में। और जो भी उत्सव मनाते थे बहुत बड़ा उत्सव वो भी क्या होता था, उत्सव में भी भगवान के जब मंदिर में उत्सव होता था तभी वो मनाते थे। मैंने भी देखा है दक्षिण भारत में जब 10 दिन का उत्सव होता था विष्णु के मंदिर में, एक दिन हंस वाहन, एक दिन गरुड वाहन, एक दिन हनुमंत वाहन, ऐसे अलग अलग वाहनों में भगवान को भगवान आरूढ़ होकर सवार होकर भगवान ऐसे जुलूस में जाते थे ऐसे, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, गीत गाते थे, नाचते थे लोग। उसके बाद ऐसे स्टेज में एक म्यूजिक ट्रूप आते थे और वो लोग भगवान के अलग अलग दिव्य गीतों को गाते थे जैसे हम वैष्णव गीत गाते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद देखा मैंने जब हम 10वीं कक्षा में चले गए हमने देखा कि उधर सिनेमा गीत शुरू हो गया, शुरुआत में एक भगवान का गीत गाते थे और उसके बाद वापस सब सिनेमा के गीत। तो मैं जाकर पुजारी को पूछा आप क्या सिनेमा का गाना गा रहे हैं मंदिर के कैंपस में, तो बोले कि हमें अगर लोगों को आकर्षित करना है बड़ा भीड़ को आकर्षित करना है तो हम क्या करते हैं सिनेमा का गाना हम डालते हैं, नहीं तो लोग आते नहीं ऐसे लोग बोलते हैं क्योंकि लोगों को प्रशिक्षण देते नहीं है। तो प्रभु जी बताते हैं कि वैदिक संस्कृति में अगर कोई लोग अपने घर छोड़कर दूर प्रदेश जाते हैं तो वो भी दिव्य स्थलों में ही जाते थे लोग, जैसे वृंदावन द्वारका मायापुर ऋषिकेश हरिद्वार रामेश्वरम ऐसे दूर प्रदेश में लोग जाते थे, साइट सीइंग के लिए कोई जाते नहीं थे। आजकल लोग जाते हैं यूरोपियन टूर में जाते हैं अमेरिकन टूर में जाते हैं। तो भगवान के लिए जो भी करते थे आजकल लोग अपने इंद्रिय तर्पण के लिए करते हैं। तो इधर एक तात्पर्य में प्रभु जी बताते हैं कि ये मनुष्य का जो आकर्षण है सिनेमा देखने के लिए, मनुष्य का जो आकर्षण नावल पढ़ने के लिए, मनुष्य का आकर्षण जो है सिनेमा के गाना सुनने के लिए, ये सब आकर्षण जो है इसको निकाल कर भगवान में लगाने के लिए हम इस्कॉन संस्था को शुरू किया है ऐसे प्रभु जी बताते हैं। तो प्रभु जी बताते हैं इस्कॉन के मंदिरों में एक तात्पर्य में अनेक लोग मुझे पूछते थे क्या गृहस्थों को घर में क्या श्री विग्रह होना चाहिए कि नहीं है? ऐसे लोग अनेक लोग पूछते थे, क्या कंपलसरी गृहस्थों को क्या घर में रखना चाहिए भगवान के विग्रह, नहीं तो जरूरत नहीं है। आप ये तात्पर्य पढ़ सकते हैं 2.3.22। आप ये पढ़कर देख सकते हैं, उधर प्रभुपाद बताते हैं, especially for the householder devotees, the path of deity worship is strongly recommended. As far as possible, every householder, by the direction of the Guru, must install the deity of Vishnu forms like Radha, Krishna, Lakshmi, Narayan, Sitaram. तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि हर एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, अपने घर में शिव विग्रह को स्थापन करना चाहिए और क्या करना चाहिए बोलते हैं, वन्स फैमिली should worship strictly following the directions and regulations of Archana Vidhi. Aur Archana Vidhi ko palan karna chahiye. Aur bolte hain, any member of the family who is above 12 years of age should be initiated by a bona fide guru. To 12 umar se jinka umar badh gaya unko diksha le lena chahiye guru se, sadguru se, batate hain. And all the members of the household should be engaged in the daily service of the Lord, beginning from morning 4 a.m. till night 10 p.m. by performing Mangalarti, Niranjana, Archana, Puja, Kirtan, Shringar, Bhoga Vaikali, Sandhya Arati, Pat, Bhog at night, Shayan Arati, etc. Engagement in such worship of deity under the direction of a bona fide spiritual master will greatly help the householders to purify their very existence and make rapid progress in spiritual knowledge. Simple theoretical book knowledge is not sufficient for any of a devotee. Book knowledge is theoretical, whereas Archana process is practical. Spiritual knowledge must be developed by a combination of theoretical and practical knowledge. That is a guaranteed way of attainment of spiritual perfection. इसका सारांश ऐसा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि घर में भगवान कृष्ण विग्रह को स्थापन करके उनको क्या करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, सुबह 4 बजे उठकर अर्चना करना और ये मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये सब गाना चाहिए और सुबह 4 से लेकर रात को 10 तक भगवान की सेवा चलते रहना चाहिए घर में, ऐसे बताते हैं। ये होने से क्या होगा, एक व्यक्ति का शुद्धिकरण होगा। और बताते हैं कि अर्चना जो है प्रैक्टिकल है, लेकिन किताब का ज्ञान क्या है, थियोरेटिकल बोलते हैं। क्या थियोरेटिकल? थियोरेटिकल सबको मालूम है, थियोरेटिकल, ठीक है। और बताते हैं बाद में, इधर देखिए क्या बताते हैं, ओनली attention engaged in the service of the Lord, especially in dressing and decorating temple, accompanied by musical kirtan and spiritual instructions from scriptures, can save the common man from hellish cinema attractions and rubbish sex songs broadcast everywhere by radios. To radio ke dwara, aajkal television ke dwara, cinema song agar jo broadcast karte hain, usse bachne ka upay kya bolte hain, hame krishna kirtan mein डूबे रहना चाहिए और शास्त्रों के वचनों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बताते हैं। ये वन इज अनेबल टू मेंटेन ए टेंपल एट होम, ही शुड गो टू अनदर्स टेंपल वेयर ऑल द अबव परफॉर्मेंसेस आर रेगुलरली एग्जीक्यूटेड। अगर आपके घर में मंदिर ना हो, भगवान की विग्रह ना हो, किसी और के घर में जाना चाहिए जिनके घर में श्री विग्रह है और वो इस तरह की पूजाएं करते हैं, जैसे जानव माता जी करती थी उनके घर में श्री श्री राधा श्याम सुंदर, तो 6 भोग अर्पण करते थे वो। वो तो एक मंदिर के समान ही था उधर, तो सुबह से लेकर रात तक इतना बिजी रहती थी, अपनी दोनों बेटियों को सिखाती थी ऐसे, और उधर कार्यक्रम होता था और सब लोग आते थे दर्शन के लिए भी, और सैकड़ों लोग आते थे कार्यक्रम में अटेंड करने के लिए ऐसे। तो ऐसे घर में जाना चाहिए बताते हैं, जैसे जयदेव प्रभु सत्यमा जी के घर में भी ऐसे बहुत लोग आकर संग लेते हैं, क्योंकि अगर खुद के घर में शिव विग्रह नहीं है तो हम किसी के घर में जाकर भगवान की दर्शन लेना चाहिए रोज, ऐसे बताते हैं, और भगवान की पूजा, भगवान की कीर्तन, इसमें भाग लेना चाहिए। तो विजिटिंग द टेम्पल ऑफ अ डिवोटी एंड लुकिंग एट द प्रोफ्यूसली डेकोरेटेड फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड वेल ड्रेस्ड इन अ वेल डेकोरेटेड सैंक्टिफाइड टेम्पल नेचुरली इन्फ्यूज द मंडेन माइंड विद स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। प्रभु बताते हैं कि मंदिर जाने से, भगवान की सुंदर श्री विग्रह की दर्शन करने से क्या होता है, हमारे भौतिक मन जो है, दूषित मन जिसमें अनेक तरह की गंदगियों को हमने डाला है बाहर इधर उधर घूमने के कारण, उस गंदगी को क्या कर सकते हैं हम, आध्यात्मिक स्फूर्ति के द्वारा हम उसको शुद्ध कर सकते हैं भगवान के दर्शन से। तो भौतिकवादी लोग जो हैं वो लोग मूर्खता के कारण कभी कभी वो तर्क वितर्क करते हैं कि मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो हर एक के हृदय में बसे हुए हैं, नहीं तो भगवान तो सब जगह में है। नहीं तो कुछ लोग भगवान की मूर्ति की विज्ञान को न समझते हुए वो बोलते हैं कि ये क्या आप लोग पुतली का इस तरह पूजा करते हैं, इस तरह लोग पूजते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि भगवान की जो श्री विग्रह है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है उसकी दर्शन करने से, पूजा करने से, प्रदक्षिणा करने से, भोग चढ़ाने से, कीर्तन करने से, उनके सामने नाचने से, भगवान के आशीर्वाद से हमारा हृदय पिघलता है, शुद्ध होता है। प्रभुपाद जी अपने बचपन में राधा गोविंद मंदिर में जाते थे, तो ऐसे भगवान के श्री वगैरह के सामने खड़े होकर कभी कभी घंटों घंटे वो खड़े रहते थे और प्रार्थनाएं करते थे ऐसे। तो बाद में हम देखते हैं प्रभुपाद जी की कितना शक्ति है, क्योंकि भगवान का आश्रय ऐसे लिया उन्होंने। पीपल शुड विजिट होली प्लेसेस लाइक वृंदावन वेयर सच टेम्पल्स एंड वर्शिप ऑफ डेटी आर स्पेसिफिकली मेंटेन्ड। तो प्रभुपाद जी खास करके बोलते हैं भक्तों को वृंदावन जाना चाहिए और उधर मंदिरों में राधा गोविंद मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर ऐसे हैं, और खास करके कृष्ण बलराम मंदिर है वृंदावन में, दर्शन लेना चाहिए। फॉर्मरली ऑल रिच मैन लाइक किंग्स एंड रिच मर्चेंट्स कंस्ट्रक्टेड सच टेम्पल्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ गोस्वामीज। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉमन मैन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस टेम्पल्स एंड फेस्टिवल्स। ऐसे बताते हैं, वन शुड नॉट विजिट ऑल दिस साइंटिफाइड प्लेसेस एंड टेम्पल्स विद साइट सीइंग इन माइंड, बट वन मस्ट गो टू सच टेम्पल्स एंड साइंटिफाइड प्लेसेस इमोर्टलाइज्ड बाय द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड एंड बी गाइडेड बाय प्रॉपर मेन हु नो द साइंस। दिस इज कॉल्ड अनुव्रज। तो हमें ऐसा नहीं कि वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में घूमो इधर उधर अपने आप, लेकिन हमें भक्तों के साथ जाना चाहिए। जैसे गाते हम से सब स्थाने हेरी बो आमी प्रणयी भक्त संगे, प्रणयी भक्त संग, प्रणयी भक्तों का मतलब प्रेमी भक्त, उनके साथ उनके संग में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे दिव्य स्थलों में तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए जिधर जाकर हमें भगवान के लीलाओं को सुनना चाहिए। देखिए भगवान की लीलाओं को सुनने से क्या होता है, हम भौतिक दुनिया को भूल जाते हैं और भगवत धाम को याद करते हैं, भगवान का स्मरण कर पाते हैं, और लगातार सुनने से हम अपने को भी भूल जाते हैं। हम जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, खुद को भूल जाना, खुद अपने खुद के शरीर, अपने जीवन की समस्याओं को, इतने जिसको हम भूल जाते हैं और सिर्फ भगवान और उनके लीला उनके स्मरण को हम करते हैं। देखिए भगवान की पूजा में ये महत्वपूर्ण बात है, अगर हम देवी देवताओं की पूजा अगर हम करते हैं तो हम खुद के बारे में सोचते हैं। किसी भी देवता के पास हम जब हम जाते हैं क्या मांगते हैं, मेरे घर में ये समस्या है इसको मिटा दो, मैं, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मामा, मेरे दादा, मेरे नानी, मेरे पौत्र, इस तरह जब हम इन चीज़ों को मन में याद रखते हुए हम देवताओं के पास जाकर हम कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए याचना करते हैं। इसके कारण भौतिक प्राप्ति भी हो जाता है, हम दुनिया में भी फंस जाते हैं और पुनः वापस एक जन्म भी प्राप्त होता है हमें। लेकिन जब भगवान की बात चलता है, हम भगवान कृष्ण की बात चलता है, कृष्ण तो अपने गोलोक वृंदावन में हमेशा लीला रचाते हैं, तो भक्तिमय जीवन में खास करके शुद्ध भक्ति का बात चल रहा है इधर, प्योर डिवोशनल सर्विस, इधर हम सिर्फ भगवान के संबंध में हम सोचते हैं, भगवान और श्रीमती राधा रानी, भगवान के माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया है, और भगवान के गायें, भगवान के गोपमित्र, जितना हम भगवान और उनके परिवार के बारे में हम ध्यान करेंगे और सोचेंगे तो हमें उस तरह का ध्यान, उस तरह का समाधि हमें इस भौतिक दुनिया से खींच कर भगवत धाम में लेके जाएगा। तदा सद्भाव भावितः यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो तो किस तरह की भावना को हम धारण करते हैं हृदय में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम वृंदावन में थे, यात्रा के लिए गए थे हम, उससे हमने एक बहुत मधुर लीला सुनी। ये मल्हारी कुंड की लीला, ये मल्हारी कुंड नाम का एक स्थान है वृंदावन में। उधर भगवान गोपाल एक बार गोपियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो आपके पास इतने रंग बिरंगे मोतियां हैं, आप कृपया मुझे कुछ मोतियां दे दो, मैं एक हार बनाकर मेरे गायों को मैं पहनाना चाहता हूँ। तो गोपियों ने बोला, क्या ये मोती तुम्हारे गाय के लिए है? ये मोती से हम माला बनाने वाले हम लोग पहनेंगे। तो भगवान ने बोला, ठीक है कम से कम एक दो दे दो। गोपियों ने बोला कि एक भी नहीं मिलेगा तुमको। तो भगवान घर वापस आ गए तो यशोदा मैया से मांगा उन्होंने, कुछ मोतियां दे दीजिए, मैं मोतियों को भूमि में बोकर मैं मोतियों का पेड़ उगाने वाला हूँ। ऐसे बोला भगवान। तो यशोदा मैया ने बोला कि किसने बोला तुमको मोती को जमीन में बोने से तुमको पौधा निकलेगा, किसने बोला तुमको? उन्होंने बोला कि अगर गेहूँ नहीं तो चावल को जमीन में बोने से वो उगता है, लेकिन मोती नहीं उगते। लेकिन भगवान ने बहुत हट किया। तो यशोदा मैया ने सोचा कि ठीक है तुम पिताजी से पूछ लो, अगर पिताजी देंगे तो ले लो। तो नंद बाबा आए शाम को, तो कृष्ण बहुत हट किया, तो पिताजी दे दिया नंद बाबा ने उनको मोतियाँ। तो कुछ मोतियों को लेके जाकर अपने नंद भवन के बगीचे में वो भगवान ने बोया। उसके बाद कुछ ही दिनों में उसके बाद भगवान गए गोपियों के पास। उन्होंने बोला कि हे गोपियों कम से कम मुझे दूध दे दो। गोपी ने पूछा किस लिए दूध चाहिए? तो भगवान ने बोला आप लोग तो रोज लेके जाते हो अपने क्या बोलते हैं गड़ा बोलते हैं, गड़ों में लेके जाते हो आप, मुझे दे दो दूध। तो गोपियों ने पूछा किस लिए चाहिए? तो भगवान ने बोला कि वो पौधा जिसके बारे में बोला मैंने आपको पहले, वो अभी मैंने मोतियों को बोया है जमीन में, उधर पानी सींचने के बदले मैं दूध सींचने वाला हूँ। तो गोपियों ने बोला कितना बड़ा मूर्खता है, हम नहीं देंगे, बोल दिया उन्होंने। तो यशोदा मैया के पास आए तो यशोदा मैया को मांगा उन्होंने। यशोदा मैया ने सोचा कि कृष्ण को क्यों रुलाए, इसलिए इस तरह सोचकर उन्होंने थोड़ा दूध दे दिया। दूध जाकर भगवान डालने लगे, कुछ ही दिनों में एक पौधा निकलने लगा और पौधा धीरे धीरे बड़ा हो गया। और भगवान जाकर बुलाया उन्होंने नंद बाबा को, यशोदा मैया को दिखाया उन्होंने, वो पौधे में इतना मोतियाँ निकले रंग बिरंगे, हरा रंग की, नीला रंग की, लाल रंग की, तरह तरह के रंग बिरंगे मोतियाँ निकले थे उसमें। तो भगवान और उनके गोप मित्र सब मोतियों का फसल काटने लगे, मोती को निकालने लगे पौधों से, इतना मोती मिल गया। और भगवान और उनके सब मित्र मोतियों का हार बनाने लगे, इतना हार बनाया उन्होंने, सब गायों को हार पहनाया, इतना तक कि गोपियां देख रही थी कि वृंदावन के बंदर भी मोती की माला पहने थे सब पेड़ में ऐसे देखा उन्होंने। तो गोपियों के बीच में बातचीत चल रहा था कि ये कृष्ण को इतना मोती किधर से मिल गया ऐसे। तो उन्होंने राधा रानी को जाकर बोला, तो राधा रानी और गोपियां सब कृष्ण के पास गए मोतियों को मांगने के लिए। तो राधा रानी एक पेड़ के पीछे छुप गई और उधर से देख रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाकर मांगूंगी, अगर कृष्ण ना बोल देते हैं तो शर्म आएगा, है ना, इसलिए अच्छा है कि हम देखेंगे। उन्होंने गोपियों को आगे भेज दिया। तो गोपियां गई कृष्ण के पास, जब उन्होंने मोती मांगा कृष्ण, उन्होंने कृष्ण को बोला कि इतना अच्छे अच्छे मोती हैं आपके पास, थोड़ा दे दो हमको। कृष्ण ने बोला एक भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास जब मैंने याचना की आपने नहीं दिया, मैं क्यों दूं आपको ऐसे। तो जब आकर राधा रानी को बोला, राधा रानी ने बोला कि परवाह नहीं, आप आ जाओ, हम भी मोती को बोएंगे, अभी पता चल गया नया टेक्निक। तो उन्होंने क्या किया, अपने पास जो भी मोतियां था घर में वो सब निकाल कर, इतने मोतियां थे सबके सब मोतियों को उन्होंने जमीन में बो दिया। और सुबह दूध से, दोपहर को घी से और शाम को चाच से उन्होंने सींचा उसको, ताकि अच्छे अच्छे पौधे निकलेंगे। देखा एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, एक भी पौधा निकला नहीं। और सब गोपियां डर गई, अभी उनकी माताएं सब बुलाकर पूछने वाले हैं किधर गया तुम्हारी मोती का हार किधर गया, पूछेंगे। क्योंकि मोती जमीन के अंदर चला गया, मिला नहीं वापस। तो सब गोपियां रो रही थी ऐसे। तभी वापस जाकर उन्होंने कृष्ण को मांगा, कृष्ण ने उनको ना करके मना करके भेज दिया। लेकिन बाद में कृष्ण ने बहुत सुंदर मोतियों से हार बनाकर उनको अलग अलग बक्सों में रखकर अलग अलग गोपियों का नाम लिखकर अपने मित्रों के द्वारा उनको भेज दिया ऐसे। इस तरह एक लीला हुआ मल्हारी कुंड में ऐसे। तो ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं अपने मित्रों के साथ, गोपियों के साथ, गायों के साथ, वृंदावन के बंदरों के साथ, मोरों के साथ और सब प्राणी जानवरों के साथ ऐसे। इस तरह के नित्य लीला भगवान के धाम में हमेशा के लिए चलता है और हम भी उस नित्य लीला में भाग लेते थे और हम भी थे उसमें हैं। लेकिन हम जब भगवान को भूलकर इस दुनिया में आते हैं, हम भौतिक दुनिया के चंगुल में फंस जाते हैं ऐसे हैं। तो इसलिए प्रभुजी बताते हैं कि इस तरह घर में दो चीज हमने बताया। एक चीज है घर में शिव विग्रह को स्थापन करके उनकी पूजा करना, नहीं तो किसी और के घर में जाना जिनके पास शिव विग्रह है और पूजा करना। और मंदिर में भी नियमित रूप से रेगुलर आना बहुत आवश्यक है। एक भक्त मुझे बता रहे थे कांग्रीगेशन के, प्रभु जी महीने में तो हम एक बार आ जाते हैं एक संडे को। मैंने बोला बाकी तीन संडे क्या करते हैं? बोला कि हम घर में आराम करते हैं। तो हमने बोला कि आपको हर संडे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि संडे तो हम आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, मन पवित्र हो जाता है, अनेक भक्तों को देखने को मिलता है, मिलते हैं। लेकिन जब हम वापस जाते हैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे, धीरे धीरे मन दूषित हो जाता है। क्योंकि भौतिक दुनिया में जाकर हम अनेक जिम्मेदारियों को निभाना होता है, हम इतने भौतिकवादी लोगों से मिलते हैं, मन वापस दूषित हो जाता है। जिस तरह के एक आईने में धूल आ जाता है इसे, तो उसको वापस साफ करने के लिए हमें वापस भक्तों के संग में आना चाहिए, हर संडे को आना चाहिए। तो ये तात्पर्य पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। खास करके गृहस्थ भक्तों को बोलते हैं प्रभुपाद जी की शिव विग्रहों की आराधना करना और उनके दर्शन करने के लिए मंदिर में आना। तो कभी कभी उन दिनों में क्या होता था, कुछ मंदिरों में एक संडे फीस्ट के समय कुछ बड़े बड़े मैनेजर लोग बैठकर उनका मीटिंग ले देते एग्जैक्टली, और संडे फीस्ट होने के बाद प्रसाद के लिए साथ में आ जाते थे ऐसे। तो आजकल अनेक इस्कान मंदिरों में नियम है कि संडे के समय सब ऑफिस को बंद कर दो, ताला लगा दो और सब लोग आकर बैठकर प्रवचन सुनना चाहिए और सब लोग कीर्तन में भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कीर्तन शुरू हो गया हम चले गए। कीर्तन और प्रवचन और भगवान के दर्शन और भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, बातें करना, कैसे हम भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सके हैं, कैसे हमारे हृदय को शुद्ध करें हैं, इसके बारे में चर्चा करना है, बहुत आवश्यक है। और दूसरा चीज़ बता रहे प्रभुपाद जी कि हमें तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए भक्तों के साथ, क्योंकि उधर शक्ति बहुत ज़्यादा है, आध्यात्मिक शक्ति, पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी है। और उधर जाकर जैसे हम यात्रा में गए थे गोवर्धन के पास रहे हम एक हफ्ते के लिए, प्रवचन सुना और भगवान का नाम लेना और प्रवचन सुनना, सेवाएं करना, उससे शक्ति बढ़ता है। हम सबका अनुभव है जब हम प्रभा जी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं, जब हम दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, अगर भगवान के नाम लेते समय सो जाते हैं तो हमारी चेतना भी नीचे धीरे धीरे नीचे आ जाता है। जैसे आपने देखा एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन जब नीचे आता है सब मकाने बड़े बड़े दिखते हैं, लंबे लंबे है ना। जब एकदम ऊपर उड़ता है एरोप्लेन तभी सब मकाने छोटे छोटे दिखते हैं, वो मच्छर के समान है ना। तो इस तरह हमारी चेतना जब ऊपर उड़ता है भौतिक दुनिया के समस्याएं बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, शोक नहीं है, भय नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान के दिव्य लीलाओं में हम डूबे रहते हैं। लेकिन जब इस भौतिक दुनिया भौतिक चेतना में आते हैं तभी छोटे समस्या भी बहुत बड़ा हो जाता है। कभी कभी छोटे छोटे समस्या के लिए पति पत्नी इतना झगड़ा करते हैं, 4 घंटा झगड़ा करते हैं एक छोटे समस्या के लिए, क्योंकि जितना हम आध्यात्मिक विकास होता है उतना हम बड़े बड़े समस्याओं को भी हम परवाह नहीं करेंगे ऐसे। इसलिए प्रभु जी बताते हैं ऐसे तीर्थ स्थलों में जाना चाहिए। तो ये अध्याय में इतना स्ट्रांगली शौनक ऋषि बताते हैं कि भौतिकवादी लोग जो हैं उनको ये सब बताएंगे तो वो बोलेगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, पहले हम आर्थिक विकास करेंगे, हम अपने भौतिक ऐशाराम को हम बढ़ाएंगे। इस तरह अनेक भौतिकवादी लोग तर्क करते हैं। पहले कभी कभी लोग तर्क करते हैं, अरे ये नाम लेने से क्या पैसा मिल जाएगा क्या, ऐसे लोग पूछते हैं ना, ये क्या हमेशा माला लेकर बैठ जाते हो आप लोग, हरे कृष्णा हमेशा, अरे कुछ धंधा करना चाहिए, हाथ पैर लेकर कुछ काम करना चाहिए, तभी तो तुमको मिलेगा। तो शास्त्र क्या बताते हैं कि पांच चीज हैं हमारे जन्म के समय फिक्स हो गया है हमारे तकदीर में, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। हमारी सुंदरता को हम बदल नहीं सकते हैं, जितना भी मेकअप करो करने के बाद भी वही रहता है चेहरा, ज़्यादा बदलता नहीं चेहरा, है ना। जैसे एक भारत के एक बहुत मशहूर सिनेमा एक्ट्रेस थी, उसने अपने नाक के ऊपर 14 सर्जिकल ऑपरेशन किया अपने नाक, क्योंकि उसका नाक थोड़ा बड़ा था, तो उसने सोचा कि उसको काट कर थोड़ा छोटा करे ताकि उसके फैंस जो होते हैं सब लोगों को खुश हो जाएंगे। लेकिन ये ऑपरेशन करने के बाद सब फैन ने बोला कि तुम ऐसे ही दिखती हो, तुमने बदला नहीं कुछ है? क्योंकि जितना भी हम चेहरे को बदलने के लिए ट्राई करें, कॉस्मेटिक वगैरह लगाए, चेहरा ऐसा ही रहता है, तो हम सुंदरता को बदल नहीं सकते हैं। इस देह वाले कैन अनाउंस इट बाद में, ये अनाउंसमेंट के साथ कर देना। तो ऐसे हाँ मैं बता रहा था तकदीर के बारे में, है ना। हमारी सुंदरता को बदल नहीं सकते हैं हम, हमें कितना पैसा मिलेगा हमारे जीवन में वो भी लिख दिया भगवान ने। मैं आपको बोला था एक प्रवचन में पहले, है ना, ऐसे मोदी नाम का अनपढ़ व्यक्ति के अंडर 50,000 लोग काम करते थे, लेकिन जो आदमी डॉक्टरेट प्राप्त किया है वो खुद साइकिल चला रहा है वो, क्योंकि ये भी तकदीर में लिखा है कितना पैसा हमें मिलेगा वो भी, कितना सुंदरता मिलेगा वो भी लिखा है, कितना हम पढ़े लिखे होंगे वो भी लिखा है, और कब हमारा मृत्यु होगा वो भी लिखा है, और कितना हमें सुख और दुख प्राप्त होगा हमारे जीवन में वो भी ब्रह्म लिपि में वो सब लिखा है हमें, इनको हम बदल नहीं सकते हैं, वो आने ही। इसलिए आपने गीता सार में सुना होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, सुना आपने, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं और भगवान ये सब दे रहे हैं हमारे जीवन में, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। जितना भी कठोर परिश्रम करो, भौतिक जीवन में जो प्राप्त होने वाला है उसको हम ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास लूना है, किसी के पास मारुति है, किसी के पास मर्सिडीज बेंज कार है, अगर आपके पास वो कार है तो उतना ही आप स्पीड में चल सकते हो, है ना। अगर लूना है तो लूना की स्पीड में जाएंगे, जितना भी हम तेजी से चलाने के लिए प्रयत्न करें जितना भी है, वो मारुति के समान चल नहीं पाएगा वो, बेंज मर्सिडीज बेंज के समान चलेगा नहीं वो। इस तरह हमारे शरीर का भी इस तरह का लिमिटेशन है, और लिमिटेशन मर्यादा है, सीमा है, सीमा है। आप खुद देखिए अपने जीवन में, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो कभी कभी एक पेज पढ़ते हैं और एक पेज पढ़ने के बाद उनको 10 पेज वो बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो 10 पेज पढ़ने के बाद एक पेज भी बोल नहीं पाते हैं वो, ऐसा है। और कुछ लोग हैं बहुत जल्दी आप एक सेंटेंस बोलने के पहले ही वो समझ जाते हैं आप क्या बोलने वाले हैं, कुछ लोग 10 बार बोलने के बाद ही समझते नहीं, कुछ लोग देखा ना आपने। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह अलग अलग गाड़ी होता है, लूना होता है, बेंस होता है, मारुति होता है, इस तरह हरेक का सीमा होता है, टैलेंट भी होता है, स्किल्स होता है, स्किल्स कलाएं हैं, शक्तियां हैं, ये सब लिमिटेशन होते हैं। तो भागवत बताता है कि कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। भागवत में बताया गया है कि एक व्यक्ति को भौतिक प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, ऐसे भागवत में बताया गया, क्योंकि हम ज्यादा बदल नहीं सकते हैं उसको। देखिए आजकल कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कैट होता है, रैट होता है, तरह तरह एग्जाम होता है, तो कभी कभी ये 1 लाख लोग, कभी कभी 2 लाख लोग लिखते हैं, तो इतना कॉम्पिटिशन में लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको मालूम नहीं कि जितना भी हम स्ट्रगल करें, हर एक का टैलेंट दिया है भगवान ने, कुछ लोग आउटस्टैंडिंग होता है। तो हमारी ओर से हमें ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि प्रयत्न मत करो। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इस दुनिया में आप प्रयत्न कुछ भी नहीं करेंगे, आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रभुपाद बोलते हैं। लेकिन अगर आप कठोर परिश्रम करोगे तो आपको बहुत तकलीफ मिलेगा। इसलिए अगर आपको कुछ प्राप्त होना है तो थोड़ा परिश्रम करो, बोलते हैं। ज्यादा करने से भी तकलीफ, ना करने से भी कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। वो थोड़ा परिश्रम क्या है, प्रभु जी बोलते हैं कि शास्त्र के अनुसार 8 घंटे 9 घंटे काम करना, बस इससे ज्यादा नहीं, बोलते हैं। बाकी समय भगवान को देना चाहिए, सुबह शाम, ऐसे बोलते हैं। 8 घंटे 9 घंटे आप 7वें स्कंद के एक अध्याय है, गृहस्थों के लिए उपदेश है, एक अध्याय उसमें प्रभु जी बताते हैं ऐसे। और क्योंकि अगर मारुति कार है उसको 30-40 में भी नहीं चलाना चाहिए, है ना, नहीं तो मारुति कार को 100 में भी नहीं चलाना चाहिए। कितने में चलाना चाहिए, 60-70 में चलाना चाहिए, तो अच्छा आपको माइलेज मिलेगा आपको उससे, है ना, इकोनॉमिक स्पीड होता है। इस तरह शरीर से भी हमें लापरवाही बनकर, आलसी बनकर, कभी कभी हम गांव में देखते हैं 4 संधि में कोई बैठा है, वो तंबाकू चबा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, देश की राजनीति की कूटनीति के बारे में चर्चा करता है, कुछ धंधा नहीं करता। ऐसे आलसी होकर भी आदमी को जीवन जीना नहीं चाहिए, जानवर जैसे। और आदमी को कठोर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। इतना कठोर परिश्रम करते हैं आजकल लोग, इतना तनाव होता है, मानसिक तनाव उनको होता है, भगवान को भूल जाते हैं और घंटों घंटे 16 घंटा काम करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। भक्ति को क्या करना चाहिए, 8 घंटे 9 घंटे जो भी करना है करके जो इकट्ठा करते हैं उतना हमें समझना चाहिए कि ये मेरे तकदीर में है, बस उससे संतुष्ट रहना, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम इसके बारे में बोलेंगे तो अनेक लोग तर्क करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, और परिश्रम करो जीवन में, और जीवन को लंबा करो, बढ़ाओ। तो ये कच्चा श्लोक है, उसमें बताते हैं कि तरव किम न जीवंती, वस्त्रा किम न श्वसंत्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशवो अपरे। इसी अध्याय में आता है वो भी श्लोक। तो शौनक ऋषि बताते हैं कि अरे अगर तुम जीवन जियोगे भगवान को भूलकर, आध्यात्मिक जीवन को भूलकर, तुम भगवान और वेद ग्रंथों को बाजू में रखकर हमेशा के लिए भौतिक प्राप्ति के पीछे पड़ोगे, तो तुम में और पेड़ में क्या फर्क है, ऐसे पूछा गया है भागवत में। तो कोई बोलेगा अरे पेड़ के साथ कैसे तुम तुलना करते हो मुझे, मैं श्वास लेता हूं लेकिन पेड़ श्वास नहीं लेता, शायद पेड़ भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं लेकिन मैं श्वास लेता हूं लेकिन पेड़ श्वास नहीं लेता, ऐसे कोई बोल सकता है ना। तो आगे बताते हैं वस्त्रा किम न श्वसंति युत। देखो ये ब्लैक स्मिथ को क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार, लोहार के पास एक ऐसा एक ये रहता है, यंत्र रहता है, करता है ना वो ऐसे बाता बोलते हैं ना, बाता रहता है, वो भी श्वास लेता है, ऐसे बोलते हैं। श्वस्त्रा किम न श्वसंति युत, तुम सोचो मत कि तुम श्वास लेते हो, वो भी श्वास लेता है, ऐसे बताते हैं। क्योंकि सिर्फ श्वास लेने वाला व्यक्ति को हम जिंदा नहीं मान सकते हैं जब तक वो भगवान का आश्रय नहीं लेता है। इस तरह पेड़ जैसे कड़े रहने वाला व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा में नहीं जाता है, भगवान की कथा को नहीं सुनता है, अपने पांव को इस्तेमाल करके मंदिर में नहीं जाता है, ऐसे व्यक्ति को पेड़ से ज्यादा वो अलग नहीं है, वो पेड़ जैसा, ऐसे बताते हैं। धर्मक क्यों न जीवंती, वस्त्रा क्यों न जीवन। तो कोई बोलेगा कि क्या तुम मुझे तुलना करते हो पेड़ से और बाता से, इन चीजों से, शायद वो बाता श्वास लेता है, शायद पेड़ कड़ा रहा है, कड़ा रहता है और उसमें वो जिंदा भी है, लेकिन ये क्या खा सकते हैं मेरे जैसे, मैं कितना अच्छी तरह गाता हूँ, तरह तरह के व्यंजन गाता हूँ, और मैं मैथुन जीवन में भी मैं सुख लूटता हूँ, इस तरह कोई बोल सकता है। उसके लिए वो क्या बोलते हैं, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशवो अपरे। वो बोलते हैं कि देखो गांव में घूमने वाले गंदे जो कुत्ता होता है वो भी खाता है और वो भी मैथुन जीवन करता है, तो उस कुत्ता से तुम कैसे भिन्न हो, तुम कैसे अलग हो, ऐसे वो पूछता है भागवत। जैसे कुत्ता बंदर और अलग अलग जो जानवर होते हैं वो भी खाते हैं, वो भी ये सब करते हैं, काम करते हैं, ऐसे तुम कैसे फर्क। तो इसका मतलब है प्रभु जी बताते हैं कि हमारे जीवन कितना लंबा जीवन हम जीते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे जीवन का क्वालिटी क्या है, किस तरह के जीवन हम जीते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके संबंध में उदाहरण देते हैं, शंकराचार्य जिन्होंने 32 साल ही जिया उन्होंने, और चैतन्य महाप्रभु वो 48 साल जिया, लेकिन कुछ पेड़ हैं जो 1000 साल 5000 साल जीने वाले पेड़ भी हैं इस दुनिया में, क्या उनके साथ तुलना कर सकते हैं? तो अगर 5000 साल जीने वाला पेड़ है लेकिन जीने के बाद भी उसका नाम यश इतना बड़ा नहीं है, लेकिन शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु कुछ ही साल जिए लेकिन उन्हें जो छोड़कर गए हैं वो सारे दुनिया के लोगों को लाभदायक है, क्योंकि उनका जीवन जो है क्वालिटी जीवन है, क्वालिटी है उसमें गुण है। इस तरह ये अध्याय में बताया गया कि हमें लंबा जीवन जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी जीवन दिया है भगवान ने उसमें हर एक क्षण को, सूर्य का उदय होता है अस्तमन होता है, उदय होता है अस्तमन होता है, जीवन को लूट रहा है सूर्य, लेकिन इस समय को हमें सदुपयोग करके भगवान का नित्य लीलाओं का स्मरण करके भगवान का नाम लेकर भगवान का आश्रय पाकर शुद्ध जीवन ऊंचा विचार इस तरह हमें जीना चाहिए। और इस तरह जीने से हमें धीरे धीरे जो शुरुआत में एक चिंगारी है श्रद्धा का, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, आसक्ति, रुचि, ऐसे बढ़कर हमें भाव और प्रेम प्राप्त होगा भगवान के ऊपर। और जब वो प्राप्त होता है हम इस दुनिया के शोक भय इत्यादियों से हम ऊपर उठ सकते हैं और हम भगवान की नित्य सेवा को हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारे आध्यात्मिक संबंध को हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो ये जो मानव शरीर दिया है इसका कुछ लाभ नहीं है। ये अध्याय आप लोग पढ़ना चाहिए, दूसरे स्कंद के तीसरा अध्याय है, प्योर डिवोशन सर्विस जरूर पढ़िए, इतना स्ट्रांग है प्योर डिवोशन सर्विस। ये बताते हैं कि ये एक श्लोक में बताते हैं, जो व्यक्ति इस दुनिया में सब लोग कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, कभी कभी जब हम प्रवचन देते हैं तो प्रवचन में एक आदमी खड़ा हो जाता है, जी मुझे भी माइक दे दीजिए मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो प्रभा जी बोलते हैं कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को क्या इच्छा होता है, बोलने की इच्छा होता है, तो लेकिन बोलने की इच्छा है लेकिन क्या बोलना चाहिए उनको मालूम नहीं, इसलिए लोग राजनीति कूटनीति के बारे में चर्चा करते हैं, सिनेमा के बारे में चर्चा करते हैं, अपने मनमानी चीज बोलते हैं। ये ऐसे बोलने वाले लोगों के जिह्वा जो है वो भागवत में तुलना किया गया है, वो एक मेंढक के जिह्वा से, बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शिन्वत कर्णपुटे नरस्य, बताते हैं कि ये जो मेंढक है ऐसी आवाज करता है, यह आवाज सुनकर क्या करता है, ये सर्प आ जाता है उसको पीछे से निगल लेता है उसको। इस तरह जो लोग बकते रहते हैं कुछ प्रजल्प को, ऐसे लोगों को क्या करता है, काल सर्प आकर उनको निगल लेता है, ऐसे बोलते हैं। और जो लोग के पास कान है लेकिन वो सुनते नहीं है भगवान के दिव्य अच्युत कथा, अच्युत कथा अमृत को सुनते नहीं है, उनके कान को इस अध्याय में तुलना किया गया है किसके साथ, ये सर्पों के बिल के साथ, क्योंकि सर्पों के बिल के अंदर क्या रहता है, सर्प रहता है। इस तरह जो लोग दुनिया के गंदे सिनेमाओं को देखते हैं, गंदे सिनेमा गानों को सुनते हैं, वो लोगों के अंदर सर्प जैसा प्रवृत्ति चला जाता है अंदर, और बाद में उनको उनको इंद्रिय जो है उनको वो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे ऐसे हैं। तो आगे बताते हैं, अगर कोई धनी व्यक्ति है उसके पत्नी के हाथ में अनेक कंकण है लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करती है, बड़े बड़े कंकण पहनकर दिखाती रहती है, तो वो हाथ किसके समान है, एक शव के हाथ के समान है, ऐसे बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा टर्बन पहनता है अपने सर के ऊपर लेकिन वो झुकता नहीं है भगवान के सामने, वो उसका टर्बन जो है वो बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जिस तरह एक समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा लोहे का नहीं तो एक भारी सोने का एक क्राउन, व्हाट इज अ क्राउन, मुकुट रख दो वो डूब जाएगा और भी जल्दी से, है ना। इस तरह जिसके पास बड़ा बड़ा डिग्री है, पढ़ा लिखा है लेकिन बेवकूफ है, वो भगवान का शरण नहीं जाता है, वो डूब जाता है इस भौतिक दुनिया में, ऐसा बताया गया है। और जिनके पास आंख है लेकिन उन आंखों से वो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों की आंख किसके समान है, भागवत बताता है कि वो मोर के पंखों में जो आंख है उसके समान है, ऐसा बताया गया है, ऐसे आंख, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है मोर। अगर कभी कभी मोर ऐसे नाचता भी है, वो हजारों आंखों से वो देख नहीं, वो आंखों से देख नहीं सकता वो, है ना, ऐसा है। मैंने सुना कुछ दो दिन पहले, हमारे एक भक्त ब्रह्मचारी गए थे बुक वितरण के लिए, तो एक बस में जाते थे किताब वितरण करने के लिए, तो हर दिन जब वो जोर से बोलते थे भगवद गीता खरीदिए पढ़िए, थोड़ा ऐसे बताते थे, तो एक अंधा आदमी बैठा था उधर, तो उन्होंने सोचा कि ये तो अंधा आदमी है, ये तो खरीदेगा नहीं, ऐसे उन्होंने सोचा। तो एक दिन ही अंधा आदमी ने उनको बुलाया, पास में आ जाओ, ये किताब के बारे में थोड़ा बताओ। तो इन्होंने बोला कि आपको तो पढ़ना नहीं आता, आप कैसे पढ़ोगे। तो उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ कि तुम रोज अनाउंसमेंट करते हो बस में, मुझे सुनाई देता है और अनेक लोग खरीदते हैं और भगवान का आश्रय प्राप्त हो रहा है इतने लोगों को, मुझे भी इच्छा है कि ये संदेश मुझे भी सुनना चाहिए, मुझे भी उद्धार होना है जीवन में, इसलिए मुझे भी एक कॉपी दे दो, मैं ले लूँगा। और घर में जाने के बाद में मेरी बेटी है उसको बोलूँगा मुझे थोड़ा पढ़ाओ, वो पढ़ा कर मुझे सुनाएगी और सुनकर मैं धीरे धीरे भगवान का नाम लेकर ऊपर उठ सकता हूँ मेरे जीवन में, ऐसे बोलकर उन्होंने भगवद गीता लिया। इसे हम क्या समझ सकते हैं, भौतिक रूप से अगर कोई अंधा भी हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो अंधा नहीं है, वो जागृत है। लेकिन अनेक लोगों का भौतिक अंग तो सही सही है लेकिन किताब को छूने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को अंधे ही माना जाता है शास्त्र के अनुसार। अगर अंक दिया है भगवान ने लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, शास्त्र का पठन करके अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते हैं, वो आंकों का क्या फायदा है, ऐसा ऐसा बताया गया भागवत में। तो ऐसे इस अध्याय में अच्छे अच्छी चीज बताए हैं हमारे लिए, कैसे हम तीव्रता से हम भक्ति कर सकते हैं, ये सब बोलकर अंत में एक क्लाइमैक्स श्लोक आता है। क्लाइमैक्स क्या है वो बताते हैं, सब लोग दोहराइए। तदश्मसारम हृदयं बतेदं नागृह्यमाणैर् हरिनामधेयैर् न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तो ये श्लोक बताता है ये सब बोलने के बाद अंत में अध्याय में कि अगर कोई व्यक्ति इतने शास्त्र को सुनने के बाद ध्यान पूर्वक भगवान के हरिनाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ये नाम लेने के बाद अगर उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, अगर उसकी आंखों में आंसू नहीं आता है, रोंगटे नहीं होते हैं और उसका हृदय पिघलता नहीं है, तो उसके हृदय को मान सकते हैं कि वो लोहा से बना हुआ है, ऐसे बताया गया। तो उसके तात्पर्य प्रभु जी बताते हैं कि कभी कभी हम नाम लेने वाले अनेक लोग नाम लेते हैं, कभी कभी सोलह माला भी करते हैं, कभी कभी महीनों महीने करते हैं, सालों साल करते हैं, तो लगता है कि हमारा हृदय पिघलता नहीं है, इसका कारण क्या है। तो ये तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रभु जी बताते हैं, वो बोलते हैं कि जो लोग हरिनाम को लेते समय अपराध नहीं करते हैं, इसका मतलब है ध्यान पूर्वक सुनते हैं हरिनाम को, नाम अपराधों को समझकर उनको अपने जब से वो अपराधों से दूर रहते हैं, वो ये एक चीज़। दूसरा चीज़ हमेशा भक्तों के साथ मैत्री जोड़ते हैं, भक्तों के ऊपर अपराध नहीं करते हैं, ये दो चीज़ बोलते हैं प्रभुपाद जी। ये दो चीज़ जो करते हैं उनके हृदय में दिव्य भाव प्रकट होगा कृष्ण की ओर और इस तरह हृदय पिघलेगा और आंखों में आंसू आएगा, ऐसे बताते हैं। और बताते हैं कि जो लोग हरिनाम लेते समय अपराध करते हैं, हरिनाम को बहुत कैजुअली लेते हैं, कैजुअली मालूम है उसका मतलब ऐसे सड़क को देखते हुए नहीं तो कौवे को बिल्ली को देखते हुए सारा नाम लेते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं लेते हैं, नहीं तो नाम लेते समय बीच बीच में मोबाइल का फोन आता है किसका नाम आया है देखते हैं, इस तरह भगवान के नाम बहुत और इसे कैजुअली सहजता से लेते हैं नाम, तीव्रता से नहीं लेते हैं, ध्यान से नहीं लेते हैं, वो अपराध करते हैं ऐसे हैं। और जो लोग वैष्णव की निंदा करते हैं और जो लोग हरिदास ठाकुर जैसे महान आचार्य को नकल करते हैं और जो लोग ऐसे इस तरह प्रभु जी अनेक चीज बताते हैं, वो लोगों को अगर कभी कभी वो नकल भी कर सकते हैं अनेक माला करके लेकिन उनके हृदय में दिव्य भाव नहीं प्रकट होगा, ऐसे बताते हैं। तो कभी कभी जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का मिलन हुआ गोदावरी के तट में दक्षिण भारत में, दोनों एक दूसरे को देखकर दोनों के आंखों में आंसू आया और आलिंगन किया एक दूसरे को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है और रामानंद राय विशाखा सखी है। जब दोनों मिलते हैं दोनों की आंखों में आंसू है और रोम कड़े हो गए और शरीर कांपने लगा, लेकिन दूसरे ब्राह्मण ने जब देखा वो लोग थोड़े सम्मूढ़ आ गया उनके अंदर है, उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु अपने ये जो सात्विक अष्ट सात्विक विकार जो है उसको छुपाया उन्होंने। इस तरह भगवान के महान भक्त हैं वो पब्लिक में अपने ये अष्ट सात्विक विकार को प्रकट नहीं करते। एक बार एक लड़का भाग कर आया मेरे पास, सुबह दर्शन चल रहा था, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदा आदि पुरुषम, ये लड़का भाग रहा है मेरे पास, बोला प्रभु जी देखिए मेरा रोम कड़े हो गए, देखिए प्रभु मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। मैंने बोला सब ठीक है दर्शन लो अभी, बोला मैंने दर्शन लेने के बाद में उसको बुलाया, मेरे रूम में बुलाया, बोला मैंने देखो अगर तुम शुद्ध भक्त होते तो ये दिखावा नहीं करते। क्यों शुद्ध भक्त जो होता है, जिस तरह एक पतिव्रता नारी होती है वो अपने शरीर को किसी पर पुरुष को दिखाते नहीं है अपने पति को छोड़कर, ये पतिव्रता नारी। इस तरह जो शुद्ध भक्त होता है अपने इस तरह के अष्ट सात्विक विकार जो है उसको भगवान को प्रकट करते हैं लेकिन दूसरों से छुपाते हैं, उनको लज्जा होता है, वो दिखाते नहीं है दूसरों को। इस तरह फिर भी हम अपने आप ये परीक्षा कर सकते हैं अपने हृदय के अंदर। मैं इतने साल से जब कर रहा हूँ कर रही हूँ, इतना किताबें पढ़ रहे हैं, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं है? क्या जो दूषित इच्छाएं हैं क्या वो कम होते हैं, क्या दिव्य भावना क्या ऊपर उठते हैं, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते हैं, क्या ये होता है, कैसे भक्तों के साथ मैत्री बढ़ रहा है, क्या हमारे अंदर सहिष्णुता और नम्रता क्या ये बढ़ रहा है, कैसे मैं किस तरह से मैं पेश आता हूँ। तो ये हम सब ये परीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भक्तिमय जीवन का लक्ष्य है हृदय का परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन? शोषण करने की भावना से सेवा करने की भावना, भोग प्रवृत्ति से सेवा प्रवृत्ति। तो इस तरह अर्जुन पहले भोग प्रवृत्ति में था शुरुआत में, किम नो राज्य न गोविंद किम भोग जीवित है न वा, इस तरह पूछ रहा था वो, लेकिन अंत में वो सेवा प्रवृत्ति में आ गया, वो भगवान का शरण लिया उसने ऐसे। तो इस तरह का परिवर्तन आना चाहिए हृदय में, लेकिन अगर हम इस तरह के अध्याय को अच्छी तरह पढ़कर समझ कर हम अपनाएंगे अपने जीवन में, इस तरह का परिवर्तन जरूर हम ला सकते हैं। मैं खास करके उस तात्पर्य को मैंने पढ़ा क्योंकि कुछ तात्पर्य हैं जिसमें ब्रह्मचारियों के लिए अच्छे उपदेश दिए गए हैं, कुछ तात्पर्य हैं जिसमें गृहस्थों के लिए अच्छे उपदेश दिए हैं। तो ये अध्याय से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम शुद्ध भक्त बने और कैसे हम भौतिकता से ऊपर उठे। ये अध्याय में दोनों के बारे में चर्चा किया है, भौतिकतावादी लोग कैसे जीते हैं कैसे मरते हैं और भगवान के भक्त लोग कैसे वो जीते हैं और किस चेतना के साथ जीते हैं और कैसे भगवान की भक्ति को अपना कर शुद्ध होकर कैसे वो परम पदम जो भगवान का दिव्य धाम को कैसे वो प्राप्त करते हैं, दोनों समझाया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तरह अपने मैं जो भी पढ़ा आज तात्पर्य से और जो भी आपको मैं प्रवचन में बताया ये प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से है। इतना सरल तरीके से बताते हैं प्रभुपाद जी, उनके शिक्षा जो होता है उसमें कुछ जटिलता नहीं है। किसी भी भारत के अनेक स्वामी होते हैं, कभी कभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, ये एक स्वामी जी थे उन्होंने प्रवचन दिया, इतने लोग उन्हें वाह वाह बोला, शाबाश बोला, ताली बजाया। तो एक विद्यार्थी बाहर आया किसी भक्त ने पूछा उसको, तुम इतना वाह बोलते हो, क्या समझा तुमने प्रवचन में? उन्होंने बोला कि इतना बढ़िया प्रवचन दिया उन्होंने, इतना अंग्रेजी उनका, इतना मधुर था, इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, हमको समझ में भी नहीं आया कुछ भी, प्रवचन में क्या बोला मालूम नहीं, लेकिन कुछ बड़ा चीज बोला उन्होंने, ऐसे बोला उन्होंने। तो ये साधु का मतलब क्या है, हमें जो जटिल चीजें हैं उनको सरल बनाना चाहिए, जो असाधु हैं वो सरल चीज को जटिल बना देते हैं वो। तो प्रभुपाद जी की किताब जो है, प्रभुपाद जी ऐसे साधु हैं, जटिल से जटिल चीज को भी बच्चे को जिस तरह समझा जाता है ऐसे हमको समझाते हैं उनके किताबों में। इसलिए हमें प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए सब सिद्धांतों को, उनके उनके तात्पर्यों के द्वारा। और जो लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, सही ढंग से प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, उनके शिष्य और उनके अनुयायी, और उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और अपने जीवन में भी हम इन चीज़ों को, ग्रंथों को पढ़कर, ग्रंथों को वितरण करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम्हारे 2 मिनट का प्रवचन से लोगों को क्या फायदा होगा, तो अच्छा है कि तुम ग्रंथ का वितरण करो, उसको प्राप्त करने से लोग पढ़ेंगे घर में जाकर। जैसे वो अंधा व्यक्ति के बारे में बोल रहा था मैं, हालांकि वो भौतिक तरीके से अंधा था, लेकिन वो जरूर जाकर पढ़ेगा, वो पढ़कर बहुत। एक ऐसे ही मुसलमान था गाड़ी में, हमारे एक भक्त गए थे उसको वितरण करने के लिए, उन्होंने सोचा कि क्या मुसलमान है, ये कैसे कर देंगे। तो मुसलमान ने बोला कि बताओ ये भगवद गीता जो रखा है हाथ में उसमें क्या है। तो उन्होंने बताया क्या क्या है भगवद गीता में। तो मुसलमान ने बोला कि मैंने कुरान भी पढ़ा है और अनेक मुसलमान लोगों की किताब भी मैंने पढ़ा है, और मैंने अनेक हिंदुओं की किताब भी मैंने पढ़ा है, लेकिन कुछ दिनों के पहले मुझे आपके प्रभुपाद जी स्वामी जी की एक छोटा पतला किताब मिला मुझे, और मैं उस किताब को कवर टू कवर पढ़ लिया मैंने, और देखा कि ये स्वामी जी जो हैं ये सिखा रहे हैं कैसे भगवान के ऊपर प्रेम बढ़ाना, वो सिखा रहे हैं इनके किताब में। ये शुद्ध दिव्य ज्ञान है। और अनेक हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी, दोनों आतंकवाद को सिखा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की किताब से मुझे प्राप्त हुआ क्या, कैसे भगवान की ओर दिव्य प्रेम को बढ़ाना। इसलिए मैं आपको पूछा इस किताब के बारे में, इस तरह बोलकर वो तुरंत ले लिया भगवद गीता किताब को ऐसे। तो ऐसे ही हमारे भक्तों ने एक और एक आदमी से मिला जो एक बड़े गांव में से था, बड़ा पॉलिटिशियन था, और वो प्रभुपाद जी के कुछ किताब मिले थे उनको पहले, उनको एक सनातन धर्म नाम का एक किताब था, उसको पढ़कर वो गांव को पूरा बताता था, बार बार उसी किताब को लेता था वो, उसके पास और दूसरी किताब नहीं था। लेकिन बाद में जब भक्तों को मिला वो, तुरंत भक्तों से कृष्णा बुक और भगवद गीता दोनों ले लिया, बोले कि अभी जाकर मैं इसको अच्छी तरह पहले मैं खुद पढ़ लूंगा और बाद में मेरे सारे गांव को, हजारों लोगों को मैं बताऊंगा, ऐसे बोला उसने। तो इस तरह प्रभुपाद जी की वाणी जो है उनकी किताबों के द्वारा करोड़ों लोगों को पहुंच रहा है, और हम लोग खुद भी पढ़ना चाहिए और इस सिद्धांत को डाइजेस्ट करना चाहिए, और इसे डाइजेस्ट पचन करना चाहिए, और अपने जीवन में उतारना चाहिए, प्रैक्टिस अभ्यास करना चाहिए, और दूसरों को बताना चाहिए सरल तरीके से। तो कभी कभी भक्त लोग प्रवचन देते हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ नया बताना चाहिए लोगों को, जो लोगों ने अभी तक सुना नहीं है, ऐसी चीज़ हम बताएंगे, हमें नया कुछ आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं, जो प्रभुपाद ने अपनी किताबों में दिया है उसको ही पढ़ना है। अच्छी तरह अगर हम पढ़ेंगे, उसको पचन करेंगे, अभ्यास करेंगे, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और हम दूसरों को बताएंगे, ज़रूर उसका असर पड़ेगा लोगों के हृदय में। क्योंकि परंपरा का मतलब है दिव्य ज्ञान, एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे व्यक्ति के हृदय में पहुंचता है ज्ञान, और परंपरा इज अ चेन ऑफ हार्ट्स, तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कवि ये मुख्यंत सूर्य। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद के हृदय में ज्ञान दिया, नारद ने वेदव्यास के हृदय में वो ज्ञान दिया। तो ये दिव्य ज्ञान हृदय स्पर्शी होना चाहिए, बुद्धि स्पर्शी नहीं होना चाहिए, हृदय स्पर्शी होना चाहिए। सिर्फ बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए प्रवचन नहीं देना चाहिए हमें, सिर्फ मन को क्या बोलते हैं, मनोरंजन, क्या बोलते हैं उसको, मंडनम लोकरंजनम, अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम, लोगों के मनोरंजन के लिए हम अगर हम बोलेंगे सुनेंगे, उससे मनोरंजन तो हो जाएगा लेकिन हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए इस तरह की आज मैंने जो भी बोला ये सारांश है ये दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का। तो मैं विनती करूंगा भक्तों से, जो लोग भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ा है आप लोग भागवत पढ़िए, पहले स्कंद से शुरू करिए, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद। मुझे मालूम है कि इस क्राउड में जो बैठे हैं 99% लोग स्वलमाला करने वाले हैं, तो अगर आपने शुरू नहीं किया भागवत तो पढ़ना शुरू कीजिए। जब हम पढ़ते हैं इतना उसमें मिठास है तो हमें इच्छा होगा कि दूसरों को भी बताना चाहिए, है ना। तुरंत हम दूसरों को जाकर हम बताएंगे और इस तरह प्रभुपाद जी की दिव्य वाणी करोड़ों लोगों को पहुंचेगा, प्रभुपाद जी खुश होंगे, भगवान खुश होंगे और हमारा भी उद्धार होगा। और जिस तरह ये लास्ट श्लोक जो बोला मैंने तदश्म सारम हृदय बतेदम, उसका तात्पर्य भी पढ़िए, बहुत अच्छा श्लोक है वो। तो दिव्य नाम का उच्चारण हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए और निरपराध भावना से करना चाहिए, निस्सहाय भावना से, तीन चीज, इनऑफेंसिवली, अटेंटिवली, हेल्पलेसली। वी शुड ट्राई टू चैंट द होली नेम। और किस भावना के साथ, शुरुआत में हमने जो गीत गाया था एको नो बुझी नो प्रभु, वो भावना रहना चाहिए हमारे जप का। इस तरह जप करने से जरूर भगवान प्रसन्न होंगे हमारे जप से और हमारा हृदय चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। हरि नाम प्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच।